बोलो हम करेंगे। बाबा ने कह तो दिया, बाबा तो राजी रहता ही है, संतो और राजी कर दे और भगवान राजी हो जाए तो क्या करेगा, क्या करेगा बोलो ना। आपको तो जैसे आता नहीं कुछ, भगवान राजी हो जाए मंजू दीदी है। अरे नहीं, अपना सब कुछ दे देगा। हाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, नई लाइन बनाओ, अरे भाई इधर को हो जाओ, थोड़े से इधर हो जाओ, एक लाइन और बन जाएगी, ठीक है। भगवान जब राजी हो जाए, भक्ति ने क्या दिखाया, भगवान राजी हुआ तो कहा बोलो क्या चाहिए, मांगो, सुना सबने और तथास्तु कर दिया। तो हमें उसे राजी करना है, और कैसे राजी होगा वो, तीन शुभ भावनाएं कल उसने अपनी हमारे सामने रखी, शुभ कामनाएं हमारे लिए। पहली, सदा खुश रहो, क्योंकि उसे लगता होगा ये मेरे बच्चे खुश नहीं रहते तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा, लगता होगा या नहीं। कोई बाप बहुत धनवान और उसके बच्चे ऐसे रहे जैसे गरीब फटे हुए कपड़े पहने, तो कहेगा ना इनको कैसे समझाऊं। दूसरा कहा निर्विघन जीवन, याद है ना, अगले सीजन में बाबा से मिलना है तो तैयारी करेंगे। पीछे वाले कुमार आ गया जाओ जरा, हाँ चेयरमैन न बनते जरा पटमैन बन जाओ, आओ आओ आओ, बुजुर्गो को जगह देखो, थोड़ी पीछे आएंगे बुजुर्ग लोग, सामने आ जाओ। तो निर्विघन जीवन जो बहुत बड़ी चीज है, और तीसरा हाँ अपनी कोई भी कमी संकल्प कर ले, कमियां तो बहुत हो सकती हैं, पर कोई एक कमी छोड़ देनी है। कौन छोड़ेगा, हम, और ये सत्य है। अगर कोई मनुष्य अपनी किसी कमी के पीछे पड़ जाए तो उसे भागना ही पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं। मेरे को बहुत ओके अनुभव है, माताओं का अनुभव सुनाओ, कई माताएं कई बहुत व्यर्थ चलता है, परेशान हो गए हम तो, सोच सोच के परेशान हो गए, क्या सोच रहे ये भी पता नहीं। कुछ चीजें उन्हें सिखा दी, संकल्प कर लिया इसको छोड़ना है, ये बहुत बुरी चीज है। न कोई समस्या, न कोई झंझट, न पैसे की कमी, परिवार अच्छा और हम बैठे बैठे दुखी हो रहे। सोच सोच के उसने ऐसा किया, वो ऐसा करती है, देखा इतने साल से ज्ञान में चल रहा फिर भी ऐसे करता है। तो दादी जान की कहती थी, कमी दूसरों की और मुसीबत हमारी, परेशान हम, कितने बुद्धिमान हो गए, हो गए ना। तो छोड़ने का संकल्प किया, छूट गए, सुखी हो गए। मैं आज की दादी की एक बात और बताऊं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी, दादी जान की मुरली सुनाने आ गई सवेरे शांतिवन में, तो मैं देखा उन्होंने सारी मुरली रिपीट कर दी, मुझे भी याद नहीं थी। मैं सोच रहा था कि 97 की आयु में संसार में ऐसा कोई व्यक्ति चारों युगों में नहीं हो सकता जिसकी बुद्धि इतनी सॉलिड हो, मेमोरी इतनी तेज हो, है ना, अपने में चमत्कार। एक बहुत अच्छी बात कही, आते ही बोला, कुछ लोग हैं यज्ञ में विघन डालते हैं, दूसरे कुछ लोग हैं विघ्नों से परेशान होते हैं, और तीसरे थोड़े से लोग हैं जो विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो अपने से पूछो मैं कौन, बहुत अच्छी बात है ना, मैं कौन हूँ। एक है अपने व्यक्तिगत जीवन में विघ्न होना, अपने परिवार में विघ्न होना, पर आजकल यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं वो जो यज्ञ के रक्षक थे, जिन पर भगवान ने विश्वास रख के अपने यज्ञ में जिन्हें स्थान दिया, त्याग दिया, पालना भी, तो बाबा के बच्चे ही यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। एक समय था बाहर के लोग विघ्न डालते थे, उसका बहुत बोल्डली साथ से सबने सामना कर लिया, लेकिन जब अपने ही विघ्न डालने लगे, मच्छरदानी में दो चार मच्छर रह जाए, मच्छरदानी पैक कर दी हो, अब चार मच्छर अंदर रह गए, क्या करेंगे, और तो कोई ग्राहक है नहीं उनके पास है? तो अच्छी तरह खून से भरपूर पेश करके जाएंगे ना सवेरे। तो अपने यज्ञ में ही यज्ञ के वक्त विघ्न डालते हैं, हमें ऐसा करना है। हमें विघ्न डालने वाला तो बनना ही नहीं है, न विघ्नों से परेशान होना है, हमें तो विघ्न विनाशक बनना है और यज्ञ में ऐसे वाइब्रेशंस बनाने हैं कि विघ्न डालने वाले असफल हो जाएं। वैसे तो ये यज्ञ किसका है, सर्वशक्तिमान का, इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसमें विघ्न डालना तो ऐसे ही है जैसे कोई सामने की पहाड़ी में जाके सिर मारे के फोड़ दूं तुम्हें, तो क्या होगा, जोर से मारे सिर कई बार कि तुम पहाड़ इतने सख्त, तुम्हें ठीक करता हूँ मैं। तो ये यज्ञ तो इतना शक्तिशाली है, इसमें बाबा तो है ही, लेकिन इसमें बहुत शक्तिशाली योगी पवित्र आत्माएं भी हैं, उनके वाइब्रेशन से इस यज्ञ का तो कुछ भी करने वाला नहीं है। इतने लोग ग्लानी कर करके चले गए, हमने अपने जीवन में देखा बाबा के समय से ही अच्छी तरह, मतलब उन्होंने सोचा था हम यज्ञ को नष्ट कर देंगे, ऐसा सोचा था, पर उन्हें पता नहीं था यज्ञ रक्षक कौन है, खुद नष्ट हो गए, उनका नाम निशान भी नहीं है, आज दुनिया में भी निशान नाम निशान नहीं, अरे कष्टों से उन्हें गुजरना पड़ा क्योंकि भगवान का विरोध किया। ऐसे महापंडित भी हैं जो भगवान का भी विरोध करते, शास्त्रों में तो दिखाया ही है। तो हमें आज हम चर्चा करेंगे, हमें प्रतिज्ञा करनी है, कल बाबा ने कराई ना, सभी एक काम करेंगे प्रैक्टिकल। कल बाबा ने कहा याद है आपको, जो दो बातें कही लास्ट में अगले सीजन तक के लिए, कि सब एक दूसरे को याद दिलाओ शुभ भावनाओं से कि हमें निर्विघ्न रहना है, निर्विघ्न रखना है, बनाना है और अपनी किसी कमी को छोड़ देना है। बाबा ने कहा बाबा जब सभा में आए तो बाबा को कितना अच्छा लगेगा, सभी निर्विघ्न है, कमियों से मुक्त है। देखो भगवान की शुभ भावनाएं, एक बाप की शुभ भावनाएं, एक परम सदगुरु की श्रेष्ठ भावनाएं, तो हमें क्या सोचना है, हमें पूरा करना है। जिनके लिए भगवान श्रेष्ठ कामनाएं रखे वो कितने भाग्यवान हो गए, सोचे सभी चिंतन करें, भगवान कामना रख रहा है, साथ में पढ़ा भी रहा है तो उन कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी दे रहा है, लेकिन शक्ति उसे मिलती है जो करना चाहते हैं। अंडरलाइन कर लें सभी, बाबा ने जो कल कह दिया अपनी कोई कमी छोड़ दो, तो यदि हम अपनी कोई कमी सच्चे दिल से छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगी, है विश्वास, है ना? तो हम पांच कमियों की लिस्ट बना लें जो कॉमन होती हैं। सुशील भाई पहली क्रोध मोह, प्रसिद्ध कमी है ना, दिखाई देती है दूर दूर तक, सुनाई देती है, और हमें ऐसी स्थिति तक पहुंचना है कि चित्त हर परिस्थिति में शांत रहे। असल में दूसरी कमी कोई एक सुन लेंगे, जरूर नहीं आप सारी। दूसरी कमी प्यार से बड़ी चीज है और थोड़ा नजदीक प्रैक्टिकल काम कर पाए, पर चिंतन नहीं, ये भी बड़ी बीमारी है जो आत्मा को बिना मतलब सुखों से वंचित करती है। हाँ, इसी में जोड़ ले अवगुणी दृष्टि और प्रचिंतन, तभी चलेगा ना प्रचिंतन, हमको देखते हैं दूसरों में। तीसरी कमी है बोल कहेगा, ठीक है उसमें से एक सुनेंगे, बोल, अगर बोल नहीं सही गड़बड़ है, व्यर्थ बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, अपमान करने वाले बोलते हैं, ऐसे सब बोलते हैं ना, इंसल्टिंग वर्ड्स, दूसरों को निराश करने वाले बोलते हैं, बोल बोल की जो कमी है उसको ठीक करना है। चौथी हम माताएं बोले, अब कुछ पहले पांच हम सॉलिड निकालने, फिर छोटी निकालेंगे। मोह बहुत बड़ी चीज है, उसको छह मास में नहीं छोड़ा जा सकता, जो छह मास में छोड़ा जा ठीक कारण है नहीं से। और बोलो टकराव नहीं, और इसके लिए कमी छोड़ेंगे अहम भाव, टकराव नहीं, दोनों को जोड़ लेंगे अहम और टकराव से मुक्त, बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना, चाहे घर हो चाहे सेवा, सब में टकराव हो जाता है, उससे हमें मुक्त होना है। पांचवा ऐसी कमी बोलो, हाँ आलसी ले ले, आलस भी योगियों का महान शत्रु है, और कब का आलस, अमृत वेले उठने का आलस और मुरली सुनने का आलस। आज तो बरसात हो रही, क्या करना चाहिए, ठंड बहुत है, ठंड लग गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए इधर ही रहो, पढ़ लेंगे ना बाद में, मुरली तो पढ़नी, बाबा ने तो कह दिया पढ़ो या सुनो, एक ही बात है। ये आलस काम आज नहीं कल कर लेंगे। मैं कुमारों को सिखाया करता था, कुछ कुमार चुस्त होते हैं, आज कपड़े मेले हुए आज ही धोके खत्म, कुछ सोचते हैं एक को क्या धोना, दो तीन हो जाएंगे फिर दो तीन हो गए, अरे संडे को ही धो लेंगे, छुट्टी है ना, संडे तक छह सात हो गए, अब बहन जी ने कह दिया सेवा करनी है, अब टेंशन कपड़े भी धोने, ये काम भी करना था, प्रेस भी करनी थी, अब सेवा भी तो करनी, छोड़े कैसे, पोस्टपोन करने की सुस्ती। जो एक्टिव लोग होते हैं वो अपने काम साथ साथ पूरे कर देते हैं, ताकि इतना काम का बर्डन आ ही न जाए कि वो टेंशन बन जाए। अच्छा, ये पांच कमजोरियों में से कोई भी सुन ले, हम ये नहीं कहेंगे पांचों फिर तो भारी हो जाएगा काम, कोई भी एक पर फोकस करे छह मास के लिए, बाबा बहुत खुश होगा। अब सबसे छोटी कमी आकर्षण, लगाव, बहुत ज्यादा इच्छाएं, ईर्ष्या द्वेष, बोलो और बोलो, अलबेलापन, और बोलो और बोलो, हो गया हो गया, और बोलो, कमियों की लिस्ट तो लंबी है, आप में जो की है नहीं इसलिए आपको याद नहीं आ रही शायद है, हाँ उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि उस पर कभी चिंतन नहीं होता, अच्छी बात है, हमें इनके बदले गुण भी अपनाने हैं, क्योंकि एक चीज हम छोड़ दें जगह खाली हो जाएगी तो और कुछ बढ़ जाएगा, इसलिए हमें गुणों से उनको भरपूर कर देना है, बस इस पे इतना ही चिंतन करेंगे। अब हम एक सुंदर चिंतन करना चाहते हैं, हमें अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है, हमारा जीवन निर्विघ्न होगा तो हमारी सेवा स्थान, हमारा घर सब निर्विघ्न होने लगेंगे। तो कैसे रहें हम लेकिन रहने की जीने की एक कला है। हम किस तरह जीवन की यात्रा में चले, जब हम आए ही नहीं तो विधान आते हैं, क्यों विधान आते हैं? कमजोर मन से विधान आते हैं, क्रोध से विधान आते हैं, कड़वे कटु भारी संस्कारों से विघन आते हैं, गलत बोलने से विघन आते हैं। यही विघ्नों का कारण है ना। हमें क्रोध न आए, जीवन में बहुत सारे विघ्न होंगे ही नहीं। हम सरल चित्त होकर रहे तो अनेक विघ्न सरल होके नष्ट हो जाएंगे। बाबा का यह महावाक्य है, मैंने 71 में सुना था, तुम सरल होंगे तो समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। सब कुछ मनोविज्ञान है ये। तो हम किस तरह जो विघ्न कम हो सरलता के साथ जिए, क्रोध मुक्त होकर जिए, कुछ चीजों को स्वीकार करते हुए जिए, खुशी बांटते हुए जिए, भावनाओं के साथ जिए। ठीक है, पांच बातें। सबको ये अपनी आदत बनानी है। किसी का संस्कार हो बहुत फीलिंग का, तो फीलिंग ही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई। हो जाएगी या नहीं? मुझे बहने फोन करती है, हमारी टीचर छोटी बहने भी बताती है अपना, मुझे बहुत फीलिंग आती है, क्या करूं मैं? और मैं जानती हूँ कि फीलिंग मेरी खुशी नष्ट करती है, मेरी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती है, मनुष्य की एफिशिएंसी, टैलेंट, योग्यताएं सब छुप जाते हैं उसमें, होता है ना? तो ऐसा हम चलना सीखे जीवन में, शक्तिशाली होकर भी चले, सरल होकर भी चले। रिजन की तो यही रहती है, जो लाइट है उसी के पास माइट है, जो हल्के है वही शक्तिशाली है। चलो अब लाइट लेंगे बाबा से। कारण क्या है? और आगे बढ़े। सबसे पहला है अपवित्रता, चाहे वो अपने अंदर हो, सेवा स्थान पर किसी के अंदर हो, परिवारों में हो। अपवित्रता, इम्प्योरिटी तो जैसे विघ्नों का आह्वान करती है। और दूसरा विघ्नों का कारण है अहंकार और क्रोध। तीसरा विघ्नों का कारण है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब। हिसाब किताब हमें योग बल से चुक तो करने हैं। मेरे पास बहुतों के अनुभव हैं, दो चार मास के ही मैंने उनके विघ्नों में और कुछ नहीं कराया, उन्हें कहा 3 मास 1 घंटा रोज योग कर दो और विघ्न खत्म हो गए। एक कौन अभी मुझे अनुभव सुना रहा था, यहाँ सुनाया दोपहर में या गंसरोर में, उसका भाई बहुत एक बड़े कंपटीशन को दे रहा था, 2 साल से सफलता नहीं मिल रही थी, फिर कुछ अभ्यास किए, क्लियर हो गया। अभी के नजदीक की बात है, अब इंटरव्यू आएगा। तो हमारे पास बहुत शक्ति है, बाबा ने जो हमें ये विधियाँ सिखाई हैं, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं। इनको हम यूज करें तो विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन भी निर्विघ्न रहेगा। इसमें एक बात पे बहुत ध्यान देना है, विघ्न आएंगे अवश्य। भाई मदद करो माताओं को, बंद कर लो, बंद कर। अच्छा आपका तो नहीं तो अंदर भी पर्स में होता है, एक बैग के अंदर एक पर्स में। माताएं बहुत संभालती है ना फोन को, भाई तो ऐसे ही डाले रखते हैं। विघ्न तो आएंगे, सकाल मूल्यों में हम सब सुन चुके हैं, रुद्र यज्ञ में विघ्न तो पड़ते रहेंगे, परंतु हमें विघ्न विनाशक बनना है, हमें विघ्नों का स्वरूप नहीं बन जाना है। विघ्न आए और हम उसका स्वरूप बन गए, वो ठीक नहीं, वो पसंद नहीं बाबा को, उससे हमारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि जीवन में विघ्न आएंगे नहीं, विघ्न आएंगे। देखो मैं एक बात कहता आ रहा हूँ कुछ समय से कि अगले 5 साल में ये संसार क्या बन जाएगा, मेंटल हॉस्पिटल। बुरी लगती है मेरी बात नहीं है, तो भगवान वाच है, मैं तो कह दिया कि मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सत्यता है इस ड्रामा की, ये भगवान वाच है। मैं क्यों बताई आपको, तो मेरे पास एक डॉक्टर आए आज मिलने से हमको 5 बजे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम जनरल फिजिशियन हैं, लेकिन हमारे पास भी 15-20% पेशेंट मन के रोगों के आने लगे हैं, और उसमें भी आने लगे हैं नींद नहीं आती। तो हम साइकेट्रिक डॉक्टर है उनके पास तो सारे वही आते हैं, पर एक जनरल डॉक्टर के पास भी गांव-गांव से लोग आ रहे हैं जहाँ नींद नहीं आती। हम तो सोचते थे गांव के लोग तो घोड़े बेच के ऐसे सोते हैं कि उन्हें जगाने के लिए गोली की जरूरत पड़े, सुलाने के लिए नहीं। पर अब सब जगह ये फैल गया, क्यों बताओ, क्यों क्यों क्यों? नहीं अभी उत्तर नहीं आया, नींद ना आना। मैं आपको बाबा के महावाक्य सुना देता हूँ, ये तीसरी की मुरली से है। इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 84 उसी समय की मुरली से है ये। बाबा ने कहा कि बहुत ज्यादा जिनके विकर्म होंगे 3 तरह से वो सुप्त होंगे। अति विकर्मों का स्वरूप है डिप्रेशन, नींद न आना, और भटकती हुई आत्माओं का इफेक्ट होना, चाहे प्रवेश करे चाहे इफेक्ट करे। ये 3 चीजें क्या कह रहे, योग में ज्यादा नींद आना, योग में ज्यादा नींद आना भी सूक्ष्म विकर्मों का परिणाम है। किसी ने मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न अभी पूछा था कुछ दिन पहले, मुझे याद नहीं आ रहा क्या, हाँ, कि मैं जब बाबा से मिलने आती हूँ तो यहाँ आते ही मेरा योग बिल्कुल नहीं लगता, जब मैं अपने घर हूँ तो मेरा योग बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बाबा से मिलूंगी, इसी रूप में है एक माता, कि मैं बाबा से मिलूंगी मुझे पहले ही पता है मुझे अनुभव नहीं होगा। तो मैंने कहा पहले तो संकल्प को चेंज कर दो। फिर मैंने उससे और 2-4 बातें पूछी, और मैंने जो उत्तर दिया वो ये था, वो सब बातें उसकी जानकर, कि पूर्व जन्मों में कभी भी आपने किसी की विशेष भक्ति में अति विघ्न डाले हैं, उसे स्थापित कर दिया तुमको, कि जब तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा तो तुम भी ऐसे ही बिना अनुभव के रहोगी, तो क्या करो, उनसे क्षमा याचना करो सच्चे मन से, क्योंकि अहंकार वश मनुष्य बहुत कुछ करता है ना। माताएं जानती हैं उनके युगल उनको ज्ञान से रोकने के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं तो हैरान हो जाता हूँ सुन के, माताओं की आजकल ये कहानियाँ बहुत, तो जो भगवान से मिलन में बाधक बनते हैं उनका हाल तो बिगड़ना ही है। ये सब विघ्नों के कारण है, हमें इन सब को पार करना है। तो पहला तो हम संकल्प कर लें, हम विघ्न डालेंगे नहीं, न यज्ञ में और न किसी के मार्ग में। कोई सुखी रह रहा है, हम परेशान होकर उसका सुख छीनने लगे। कोई उन्नति कर रहा है, हम ईर्ष्यावश उसमें बाधा डालने लगे। इसका बहुत नाम हो रहा है, हम परेशान होकर उसे बदनाम करने लगे। ये विघ्न डालना और हमें याद रखना चाहिए। मैं ये बात कई बार सुना चुका हूँ, फिर सुनाता हूँ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, वो व्यवहार हमें भी प्राप्त होगा। जो विघ्न हम दूसरों के आगे डालेंगे, वो विघ्न हमारे आगे भी आएंगे। ये अविनाशी सिद्धांत है इस सृष्टि का। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक अपने को समझा दें, किसी के जीवन में हमें विघ्न रूप नहीं बनना है। हमें सबको राजी करना है, कहा ना बाबा ने, राजी रहो, राजी करो तो बाप भी राजी होगा। राजी करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मनुष्य किसी को क्या दे सकता है? सब तो अपना अपना भाग्य लिए हुए हैं। हम दें दूसरों को एप्रिसिएशन, प्रशंसा करें, हम दूसरों को सम्मान दें, खुशी होगी ना उन्हें। हम किसी का अवगुण वर्णन करें, खुशी नष्ट हो जाएगी, चाहे वो कितना भी अच्छा पुरस्कारार्थी हो। हम दूसरों को उमंग दिलाएं तो बहुत खुशी हो जाएगी। हम दूसरों को सहयोग दें तो बहुत खुशी होगी। जिनका संसार में कोई नहीं, उनके साथ ही हम बन जाएं तो उसे कितना अच्छा लगेगा, बाबा भी हमें कितना प्यार करेगा। हम सबको राजी करें, और नहीं तो मधुर बोल बोल कर ही राजी करें, अच्छे वाइब्रेशन देकर राजी करें। माताएं जानती हैं, दो बच्चों को राजी करना भी आजकल मुश्किल काम है, फिर भी लक्ष्य तो रखते हैं ना, अपने बच्चों को राजी करें। हमारा भी ईश्वरीय सुंदर परिवार है, हम भी सबको राजी करें, लक्ष्य बना लें, मुझे सबको राजी करना है। किसी को कुछ चाहिए वो देकर भी, आपके पास कोई डिपार्टमेंट है सेवाओं का, इसलिए है डिपार्टमेंट, इसलिए है सुख देने के लिए, इसलिए है। और बोलो, ये नहीं मैं इंचार्ज हूँ बस, इस नशे में आ गए, कार्य सफल करने के लिए है, बाबा की दुआएं लेने के लिए है, आत्माओं की दुआएं लेने के लिए है। बिल्कुल ये बात बोलनी नहीं है कि जिस मनुष्य के साथ संगम युग पर महान आत्माओं की दुआएं हो, उसका मार्ग निर्विघ्न सहज सफल हो जाता है। और जिसके पास महान आत्माओं की बद्दुआएं हो, वो आराम से चल रहे होंगे ना, सीढ़ी से गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, दिया बिना मतलब ही चल रहे होंगे, स्लिप होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि चलते चलते बैलेंस बिगड़ जाता है। आज ऐसा ही नीचे किचन में हुआ, ये बुरा सा व्यक्ति था बेचारा, खाली जा रहा था, बैलेंस जो बिगड़ा तो ऐसे जोर से गिरा, बच गया स्टेशन लगने में, उसको उठाया चार लोगों ने भाग कर। तो ये हो जाता है ना, दुआओं का खजाना बहुत सुंदर खजाना है। हम दुआएं दें भी और लें भी। लेने के लिए क्या करेंगे? मांगेंगे, मुझे दुआएं दो भाई। क्या करेंगे? सुख देंगे, सहयोग देंगे, अपनापन देंगे, ईश्वरीय कार्यों में मदद करेंगे, और ये खजाना जमा करेंगे। हम सबको तो स्वर्णिम अवसर है, भगवान की दुआएं मिल सकती हैं। सोचिए, बाबा ने शेमास का होमवर्क दिया, जो सत्य दिल से करेंगे दुआएं मिलेंगी ना। और कोई सोच ले, अरे बड़े तो कर ही नहीं रहे, हमारा नंबर तो पीछे आएगा, इसमें नंबर की बात हो रही है, कि पहले बड़े करें फिर छोटे करेंगे, ये तो जो करे वही बड़ा है। तो अगर हम बाबा से दुआएं लेना चाहते हैं और सब जानते हैं परमात्म दुआएं कितनी बड़ी चीज है, उसका एक सुंदर संकल्प किसी को महान योगी बना सकता है, ऊपर से ही उसका एक संकल्प किसी के विघ्नों को नष्ट कर सकता है, उसकी थोड़ी सी शुभ भावनाएं किसी के रोग हर सकती है। जानते हैं ना सब, पुरुषार्थ भी सरल हो सकता है, जीवन भी सरल हो सकता है, उसकी दुआएं लेना भी बुद्धिमत्ता है या नहीं। संकल्प करें, हम वो करेंगे जो बाबा ने हमें कहा है। मुझे तो ये बात आज याद आ रही है बहुत, भगवान हमसे उम्मीदें रखता है, हम सोच भी नहीं सकते दुनिया है ना। कौन ऐसे होंगे जिनसे भगवान उम्मीदें रखता हो, और तो कुछ होंगे ना। कितने भाग्यवान हैं हम उसके नैनों में, उसके प्यार में, दिल में समाये हुए हैं। वो हमें संसार में चमकाना चाहता है, वो चाहता है मेरे बच्चों के चेहरे ऐसे हों जैसे सबसे दुख दूर हो जाए इन्हें देखते ही। और उसे कैसा लगता होगा उसके बच्चे भी उदास बैठे हों। लोग नहीं कहेंगे पहले अपने बच्चों को तो खुश करो, हमसे बात पीछे करना, कहेंगे ना भगवान को भी लज्जा जाएगी उसको, मेरे बच्चे खुश नहीं रहते। तो हम कर ले वो सब जो बाबा हमसे चाहता है, और ये सत्य है, अगर हम उसकी श्रेष्ठ कामनाओं को पूरी करेंगे तो वो हमारी श्रेष्ठ कामनाएं पूरी कर देगा, जन्म जन्म करेगा। तो अपर युग से भी तो हमारे पास बहुत कामनाएं होंगी ना, हम उसे बुलाएंगे। देखो भक्ति में आप में से बहुत जानते होंगे, कई भक्त महसूस करते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं। वो उनकी महसूसता है जिन्होंने भगवान की नहीं सुनी, और जिन्होंने उसकी सुनी फट से सुनता है। बाबा ने महावाक्यों में बता दिया, साकार मूल्यों में, मैं तुम्हें भक्ति में भी मदद करता आया हूँ, मैं तुम्हारी श्रेष्ठ कामनाओं को पूरी करता आया हूँ। तो किस पर ध्यान रहा होगा भगवान का भक्ति में, जिनका इस समय उस पर ध्यान रहा, जिन्होंने इस समय उस पर ध्यान नहीं दिया, केवल उसके स्वरूप पर नहीं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वो भी भला उन पे ध्यान क्यों देगा। ऑटोमेटिक नियम है। तो हम बाबा की बातों पर ध्यान दें। हम ये ना सोचते बाबा तो कहता ही रहता है कर लेंगे, 20 साल तो हो गए कुछ हुआ नहीं, अब 6 मास में क्या होगा, ये संकल्प नहीं। जो 100 साल में नहीं हुआ वो 1 दिन में हो सकता है। समय का बड़ा महत्व होता है, समय बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, समय सबसे बड़ा गुरु भी होता है, सबसे बड़ा शिक्षक भी होता है। वो बहुत समय से नहीं होता, वो क्षण भर में भी हो जाता है। राइट टाइम आने पर बिगड़े काम भी सुधर जाते हैं। एक बहुत सुंदर समय हमारे हाथ में है, हम खजानों से भी स्वयं को भरपूर करें। तो एक खजाना दुआओं का, मैं ज्यादा खजानों की चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा खजाना जिस पे हमें ध्यान देना है वो है पुण्य कर्मों का खजाना। और सभी संकल्प कर ले, हमें रोज कई पुण्य कर्म करने हैं। पुण्यों की जरा एक छोटी सी लिस्ट निकाल लें, छोटी सी। पहला पुण्य, एक पुण्य, ज्ञान देना, किसी को सदमार्ग दिखा देना, वैसे में जोड़ लें किसी को भगवान से मिला देना, कितना बड़ा पुण्य होगा। एक बहुत अच्छा समाचार भी सुना दूं, कहीं से आज, कहां से आए, गुजरात से कोई आए थे, तो एक सन्यासी बहन आई, उसको ज्ञान बहुत अच्छा लग गया है। किसी डॉक्टर के पास आती थी वो, मुझे सिटी का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने उसको थोड़ा ज्ञान सुनाया, आयु उसकी बड़ी नहीं है, 40 साल की होगी। वो ज्ञान ले लिया डेढ़ मास से और बाबा से मिलने आए, संपूर्ण निश्चय हो गया उसे। तो मैं नीचे से आया था, दोपहर में खाना खाया, कहा एक मिनट खड़े खड़े मिल लो। तो मैं उनसे मिला तो कहा मेरे मन में एक प्रश्न रहता है, आप उसका उत्तर दे मुझे। मैंने सोचा ज्ञान का कोई प्रश्न होगा, वे सन्यासी है। कहा हमारे ही आश्रम में कई सन्यासी बहने हैं, सुन ले आप, जानते तो हम हैं, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ। कहा वो बेचारी जिस लक्ष्य से सन्यासी बनी थी, तो वहाँ न कोई लक्ष्य है न कोई साधना है, बल्कि डर रहता है, अपनी सिक्योरिटी नहीं है। सन्यासी भी तो गंदे होते हैं ना, कहीं डर रहता है। कहा मेरी इच्छा है कि भिन्न भिन्न जगह पर जो सन्यासी नहीं बहने हैं उनको मैं निकालूं और बाबा का बच्चा बनाऊं। इतने सुंदर बात है, मुझे विधि चाहिए। कहा हमारे वही है कई। तो मैंने उसको विधि बताई, पहले तो थोड़ा ध्यान दो, देखो उनके संस्कार कैसे हैं, वो रेडी हैं या खा पी के मस्त रहने लगी कि यही जीवन ठीक है। क्योंकि तो संसार में फिर मैंने कहा आपके पास तो 5-7 रहने हैं, मेरे अंदाज में 1,00,000 सन्यासी ऐसे हैं जो किसी महान लक्ष्य के साथ सन्यास लिया था जिन्होंने, और जब सन्यास लिया तो उन्होंने पाया न साधनाएं हैं, न त्याग है, न कोई ज्ञान है, बन गए सन्यासी, जी रहे हैं, गृहस्थी बन गए हैं। मैंने कहा मेरा तो संकल्प है उन 1,00,000 सन्यासियों को बाबा का बच्चा बना देना। मैंने कहा आप इसके लीडर बन जाओ जरा, खुश हो भी बहुत। तो देखिए ये स्थिति है, हम जानते हैं साधनाएं नहीं है, मुक्ति के लिए चले थे, कोई घर से परेशान होके चले गए, लेकिन ऐसे भी सन्यासी हैं जो महान लक्ष्य को लेकर आए थे, मनुष्यों के कल्याण को साथ लेकर संकल्प को लेकर आए थे, लेकिन बेकार हो गया सब कुछ। ऐसा न संग मिला, न ज्ञान मिला, न साधनाएं मिली, न पवित्र वातावरण मिला। तो हम सभी को पुण्य कर्म करने हैं, ज्ञान देना, भगवान से मिलाना, यज्ञ सेवा करना, जो सभी बहने माताएं भाई कर रहे हैं, ये भी पुण्य है ना। आगे बढ़ो, दूसरों को सुख देना, सहयोग देना। मैं एक चीज और कहता हूँ, प्रार्थना क्या देता हूँ, आपके सेंटर में कोई गरीब भाई या बहने हैं जो मधुबन में नहीं आ सकते बेचारे, उन्हें ले आओ अपने खर्चे से, बहुत बड़ा पुण्य होगा। किसी को आप भगवान से मिला दें, उसकी दुआएं आपको ऊपर ले जाएंगी, लिफ्ट बन जाएंगी, ये भी पुण्य है। दुनिया में भी कोई पेशेंट है, उसके पास पैसा नहीं है, उसे मदद कर देना पुण्य है। हमारे यहाँ भी हो जाता है कभी कभी, किसी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई, पैसा सेंटर में नहीं है, बेचारी प्यासी मजदूरों की बहुत दर्द देखती है, अब तो अपने यहाँ हॉस्पिटल भी है, यहाँ भी है, बॉम्बे में भी है, उन्हें मदद कर देना बहुत बड़ा पुण्य है। तो ऐसे पुण्यों का खाता बढ़ाते चले। ये पुण्य समय पर हमारी जीवन नैया के लिए बहुत बड़ी चीज बन जाते हैं। लास्ट बात एक कह दूं, जीवन नैया कभी संसार के सागर की झंझावटों में, तूफानों में, लहरों में उलझ जाए, डगमगाने लगे, तब पुण्य की पतवार नैया को पार लगाएगी। इसलिए पुण्य बहुत बड़ी पूंजी है, इसको भी बढ़ाते चलना है। ये पुण्य विनाश काल में हमें बहुत मदद करेंगे। सबको अनुभव होगा, धन साथ छोड़ गया, बच्चे साथ छोड़ गए, उन्होंने साथ नहीं दिया जिन्हें हमने बहुत प्यार किया, अपनापन दिया, अकेले रह गए, लेकिन साथ भगवान का मिलने लगा उन्हें जिन्होंने उसको साथ दिया। हो गया नहीं, यही होने जा रहा है। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाएंगे। इस मुरली के को 5-6 पॉइंट्स में अपने पास लिख के रख लेना और पढ़ना कुछ दिन तक। सुंदर सुंदर शब्द जो बाबा के बच्चे, बाप को राजी करो ना, बात छोटी सी है लेकिन क्या है इसमें देख लो, ऐसे ऐसे सब छह मुरली सबको मिल गई है तो स्टीवन की नौ मुरलियों को फिर से शुरू करना पड़ना और उनका पूरा पूरा फायदा उठाना और अपने मन में ये चैलेंज ले लो कि जो बाबा ने कहा हम करेंगे ही। तो अगली बार जब बाबा हमारी सभा में आएगा तो बाबा को बड़ा आनंद आएगा, वाह मेरे बच्चे वाह। कितनी बार गाया कर, वाह मेरे बच्चे वाह। हम क्या गाएं, वाह मेरे बाबा वाह। चलो इसी आनंद के साथ ओम शांति।